प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग दो, लेक्चर नंबर 55। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ॐ सुधात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। सुर असुर नरपति वंद्यने प्रविनष्ट घाती कर्मणे, प्रणमन करूधर्म करता तीर्थ श्री महावीरने, वैशेष तीर्थंकरने सिद्ध शुद्धास्तित्वने, मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्या चरण संयुक्तने, ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने, वंदुवाणे हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने, अरहंतने सौ सिद्धने नमस्करण करिये रीते, गणधरने अध्यापकोने सर्वसाहु समूहने, तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख पवित्र आश्रम पामिने, प्राप्ति करू सान्यनी जेनाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमा ग्रंथ है, उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य युक्ति टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये दूसरी पुस्तक है भाग दो, उसमें से पृष्ठ संख्या 69 पर हम आ गए, 69 पर। 27 नंबर की गाथा, उसका अन्वयार्थ और दोनों ही आचार्यों द्वारा लिखित टीका हमने पढ़ी है। उसके बाद प्रवचन को भी यहाँ प्रारंभ हुआ है। अब यहाँ जो 69 पृष्ठ पर जो बीच में नीचे गाथा लिखी, उसके नीचे के पैराग्राफ से हम शुरू करते हैं। छे ज्ञान आत्मा जिन मते, ऊपर जो है ना गुजराती में हरिगीत, उसको कोट किया यहाँ पर। वीतराग सर्वज्ञ के मत से ज्ञान वह आत्मा है, आत्मा बिना नहीं ज्ञान छे, आत्मा बिना ज्ञान जानन स्वभाव बाहर कहीं नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का ही स्वभाव है। ते कारणे छे ज्ञान जीव, सेकंड लाइन की जो गुजराती हरिगीत के सेकंड लाइन, ते कारणे छे ज्ञान जीव, इस कारण से यह ज्ञान जीव है। जीव है कहो, आत्मा है कहो, एक ही बात है। जीव ज्ञान छे व अन्य छे, ज्ञान है वो जीव कहा, पर जीव है वो अकेला ज्ञान है क्या? नहीं, वो अन्य भी है, कौन सा, सुख भी है, वीर्य भी, इस तरह से उसका अर्थ होता है। और जीव आत्मा जो है यह ज्ञान स्वरूपी है, आनंद स्वरूपी है, श्रद्धा स्वरूपी है, अस्तित्व स्वरूपी है, सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। यह आत्मा ज्ञान है और आत्मा ज्ञान आदि अनंत गुण स्वरूप है, ये उसका अर्थ होता है। एक एक गुण स्वरूप कह सकते हैं, परंतु ज्ञान की ओर से लेना तो ज्ञान है वो आत्मा है, परंतु वो आत्मा है वो ज्ञान भी है और अन्य भी है, क्योंकि अनंत गुणों का समूह वही आत्मा है। अब अर्थ करते हैं, टीका टीका है ना, भाषा तो सादी है परंतु लॉजिक से सिद्ध करते हैं। वकील लोग कोर्ट में न्याय से काम लेते हैं ना, वैसे यह तो भगवान की कोर्ट है। वीतराग तीन लोग के ना जिनेश्वर देव आत्मा को सिद्ध करते हैं कि आत्मा क्या है, क्योंकि आत्मा ने मैं मुझे मुझे ही अपने को जानना है तो पहले उसका स्वरूप निश्चित करना चाहिए। तो आत्मा क्या है और किसमें खाली आत्मा आत्मा नहीं, ये सारा 12 अंग का तो उसमें से निकला ना। ओम इस आत्मा सभी सभी पदार्थों का संपूर्ण ज्ञान है और उसके वाणी में वो सब आता है, अकेले आत्मा की बात नहीं। उनका कहना है दिव्य ध्वनि में खाली आत्मा 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 इतना ही आता है क्या, पर आत्मा आता ने आत्मा केवल एक ही है कि ईश्वर शिवम पदार्थ 6 द्रव्य है, तो 6 द्रव्यों का संपूर्ण उसके जो स्वरूप की रचना ये क्या है, परिणमन कैसे होता है, एक दूसरे से क्या संबंध है, सब कुछ उनकी वाणी में आता है। ये सब जब हम पढ़ रहे हैं उनकी भगवान की वाणी के द्वारा ही हमारे तक आ गया है। देखो ये अभी यहाँ हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, प्रत्येक ग्रंथ का सार यानी तात्पर्य उसको मोटो क्या है, वीतरागता, वीतरागता कैसे प्राप्त करें। अब यहाँ तो परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, आत्मा के अनुभव की ही बात यहाँ चलेगी। अनेक विषय है जैसे न्याय शास्त्र होते हैं लॉजिक से सिद्ध करना है, मुनि का स्वरूप देव का स्वरूप शास्त्र, ये सब अनेक उसके विषय है। जैसे तीन लोक की रचना वाला वो त्रिलोक सार का विषय वो जुदा है, जैन भूगोल जिसको हम कहेंगे, वो गणित ये सारा कर्णानुयोग की जो थियोरी है, कर्मों की थियोरी, उसके बाद में तो बारे में इतना डिटेल नॉलेज है उसके, एक एक गणित आप सुनेंगे तो विश्वास नहीं होगा, पहले में पहले वो समझ में आना कठिन होता है। यानी सभी ओर से सभी पदार्थों का संपूर्ण नॉलेज उनको, अभी हमने सुबह बात चली थी ना अपनी, कौन से अंगों में क्या क्या विषय चलता है। हाँ ये महाधौला अभी महाबंध का शुरू हुआ है ना, बहुत शॉर्ट में बताया वहां पर, परंतु तो एक कितना अगाध है कि ऐसे कोई वस्तु ही नहीं कि जिसके बारे में भगवान के ज्ञान में वो नहीं झलका है।
देखो बात ऐसी होती है कि उनकी तो निरक्षरी ध्वनि निकलती है, ओम ऐसा ही उसमें से आवाज निकलता है, इसमें 6 द्रव्य है, ये नाम है, कुछ नहीं आता है। ओम ऐसी ही बात निकलेगी, लेकिन बात ऐसी जिसके जितने ज्ञान का उघाड़ है, चैप्शम ज्ञान अधिक है, वो उसमें से अधिक माल ग्रहण करता है।
यानी इसीलिए उसको दिव्य ध्वनि चमत्कारी ध्वनि है कि केवल ध्वनि सुनकर यहाँ जीवों को सारा बोध हो जाता है।
देखो बात ऐसी होती है, अभी हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। कोई स्कूल में या कॉलेज में टीचर सिखाता है, सिंसियर है तो सिखाएगा तो सबको इक्वली सरीका, इसमें इसको अच्छा सिखाओ उसको बुरा सिखाओ ऐसी बात नहीं, लेकिन जिसके जैसे ज्ञान का उगाड़ होगा, कोई 100 में से 100 मार्क मिलेगा, कोई 100 में से 35 मिलेगा, कोई 100 में से 0 भी मिला सकता, वो उसके उसके ज्ञान के ऊपर आधार है। वैसे जिसके ज्ञान का क्षमक्षम अधिक है, ज्ञान का उगाड़ अधिक है, वो उसमें से अधिक माल खींच लेता है और वो गणधर्म में ही पॉसिबल है, क्योंकि गणधर्म भी तो 4 ज्ञान के धनी है, इसलिए उनके ज्ञान का उगाड़ अधिक है तो वो ये 12 अंक की रचना करेंगे, क्योंकि उनको अधिक से अधिक उसका अर्थ समझ में आता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसा हो सकता है, तो ऐसा कहते हैं कि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, अन्य अन्य मतलब सांप के उसके लैंग्वेज में, सिंह को उसके लैंग्वेज में, और कोई जो गाय होगी उसको, अभी अपन समझने के लिए कोई मद्रासी होगा तो मद्रासी को मद्रासी में, आसामी को आसामी में, हिंदी को हिंदी में, गुजराती को गुजराती में, इस तरह से अपनी अपनी भाषा में वो जीव समझ से ग्रहण करता है। ये क्या है, निकलता तो सिर्फ ओम, लेकिन उसमें से ऐसी कन्वर्जन होकर अपने अपने ज्ञान का विषय जिसका जिसका जैसा होता है। तो हमको लगता है कि सिर्फ आत्मा की बात करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, सबकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ अपना विषय क्या है? आत्मा का अनुभव कैसा करना। ये क्या पुस्तक का नाम क्या है? प्रवचन सार। ये जो दिव्य ध्वनि है उसमें सारभूत क्या बात है? तो अपने स्व को पहचानना। इसलिए अलग अलग तरीके से समझा रहे। यहाँ भी बताए ना कि यह ज्ञान स्वरूपी है, आनंद स्वरूपी है, शांति स्वरूपी है, वीर स्वरूपी है, यानी जो वो जो गुण है उस रूप में परिपूर्ण है। अनुभव करते वक्त ऐसे अलग अलग नाम नहीं होंगे, वो तो अखंड आत्मा का अनुभव होगा।
आवाज बहुत ज्यादा आ रही, क्योंकि आपके आवाज से वो घूम आवाज ही ज्यादा है। देखो अभी हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर आपका समाधान हुआ ना आपके प्रश्न का? हाँ, यहाँ विषय आत्मा संबंधी चल रही, क्योंकि हमें आत्मा का अनुभव करना है। फिर भी अकेले आत्मा की बात नहीं, यहाँ आगे चलकर पूरी वस्तु व्यवस्था बताएंगे, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व वगैरह जो छह द्रव्यों में जो पाया जाता है उसके बाद पहले बताएंगे। सभी आप सभी सब्जेक्ट में नहीं आ रहे ना? सभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वहाँ तो आत्मा की बात भी नहीं कहेंगे हम, बहुत विस्तार से वहाँ चलेगी। बंध के संबंध और हृदय के संबंध में, कर्म बंधन के बाद उसमें संक्रमण होता है, उदीर्णा होती है, उत्कर्षण होता है, उत्कर्षण होता है, कितने का होता है, कैसे होता है, क्या क्या रचना होती है, इतना। महाधौला का चौथा लेक्चर हुआ, महाबंध, उसी को महाधौला कहते हैं। महाधौला कहो महाबंध कहो एक ही बात है। चार ही दिन हो गए हैं उसके, और शुरुआत में तो बिल्कुल कर्मों के नाम, आठ कर्मों के नाम बताएंगे, ऐसे बताएंगे, तो ये तो स्टार्टिंग है अभी। और धौला में जैसे गणित वगैरह आते वैसे इसमें नहीं है। हाँ देखो अभी हम यहाँ आगे पढ़ते हैं। महाधौला कहो महाबंध कहो एक ही बात है। जय धौला उसके 16 पुस्तकें अलग है, वो कषाय प्रावृत कहते हैं उसको, कषाय पाहुड़, वो अलग है। उसमें तो अकेले धौला 16 भाग अलग, हाँ जय धौला 16 भाग अलग, उसमें अकेले मोहनीय कर्म की बात है 16 पुस्तकों में, 500-500 पेजेस की एक पुस्तक है समझो, तो ऐसे 16 पुस्तकों में केवल मोहनीय कर्म की बात है, तो कितना विस्तार होगा आप इमेजिन कर सकते हैं उसमें। वहां तो परमाणु परमाणु तक का हिसाब है, मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, एक एक परमाणु के डिफरेंस से जीवों के जितने भेद पड़ेंगे, क्या क्या, बहुत, इतना आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना वो जयधौला में विस्तार है। अब यहाँ महाबंध में तो बंध की बात चलेगी, अब प्रकृति बंध केवल हम 500-600 पेजेस में केवल प्रकृति बंध की चर्चा करने वाले। ये स्थिति बंध के 2 पुस्तकें अलग है, अनुभाग बंध की 2 पुस्तकें अलग है, प्रदेश बंध की 2 पुस्तकें अलग है। तो इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
और क्या है, ये सारे 16, 32 और 7 39 पुस्तक एक एक बार पढ़ चुके हैं धौला के,
11 साल में हो गए ये सब। हाँ।
अभी महाधौला यानी जिसको महाबंध कहते हैं उसका पहला खंड चालू, वो 7 पुस्तकें हो
गई। पहले वो सब 16, 32, 7, 39 हो गए आगम सारे पढ़ के, उसके बाद फिर दोबारा धौला हो गए हमें 16 भाग। अब हम महाधौला को या महाबंध जिसका नाम है उसको पढ़ रहे, उसके 7 पुस्तकें हैं, वो भी सेकंड टाइम हुआ हो रहा है अभी। देखो अभी नीचे यहाँ क्या पढ़ा, यह ज्ञान आत्मा ज्ञान है और आत्मा ज्ञान आदि अनंत गुण स्वरूप है, नीचे के तीसरे लाइन। अब अर्थ करते हैं, टीका है ना, भाषा तो सादी है परंतु लॉजिक से सिद्ध करते हैं, ये पढ़ा था। वकील लोग कोर्ट में न्याय से काम लेते हैं ना, वैसे यह तो भगवान की कोर्ट है। वितरांग 3 लोग के नाथ जिनेश्वर देव आत्मा को सिद्ध करते हैं कि आत्मा क्या है और आत्मा में ज्ञान क्या है। अब आते हैं पेज नंबर 70 नंबर के पृष्ठ पर। पुण्य पाप दयादान व्रत भक्ति का परिणाम होता है यह आत्मा में नहीं। हम कहेंगे अरे आत्मा में नहीं होता क्या, शरीर में होता है? तो कहते आत्मा किसको कहा, ये स्वभाव को आत्मा कहा। अब पर्याय को, पर्याय है वो एक अंश है और पर्याय में राग है, हम आत्मा ही उसको, जिनेन्द्र भगवान ने आत्मा किसको कहा है, तो जो स्वभाव भाव है जो परमात्मा का हमारा सबका सभी जीवों का एक समान है उसको आत्मा कह दिया। उस आत्मा में राग का एक कण भी नहीं है, लवलेश नहीं है। तो कहते तो ये कौन कर रहा है, हाँ पर्याय में हो, आत्मा का ही वो परिणाम है परंतु उस रूप आत्मा हुआ नहीं है। तो कहते वह आत्मा में नहीं है, यह तो विकार है विभाव है। अब जिसको कल्याण करना हो, धर्म करना हो, अब आप कहेंगे आत्मा में तो ये है ही नहीं है तो चिंता क्यों करना, पर पर्याय में है इसलिए जीव पर्याय में दुखी हो रहा है, यानी सुख स्वरूप होने पर भी पर्याय में दुखी हो रहा है, तो ये धर्म भी पर्याय में ही होना है, तो ये धर्म प्रकट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसे आत्मा और ज्ञान एक है इसलिए ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होना है। आत्मा में एकाग्र होना का अर्थ क्या, ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होना है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होने से वह आत्मा में एकाग्र हुआ। कितने एक स्टेप बाय स्टेप सादी भाषा में पूरा ही धर्म प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं, और हमने धर्म को बहुत कुछ कठिन मान के बैठे हैं, अरे हमसे तो तप नहीं होगा तो हमारा कैसा होगा कल्याण और क्या होगा, ऐसा लगता है ना, क्योंकि ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होने से आत्मा में एकाग्र हुआ है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से आत्मा कोई जुदा तो है ही नहीं है, तो उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होता है। समझ में आया, यहाँ तो पूर्ण केवल ज्ञान की बात करते हैं, यानी यही वो विधि है जिससे केवल ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। क्या करना है, आत्मा में एकाग्र होना है। वो कौन सा आत्मा, जो राग रहित है ज्ञान स्वभाव है वही तो आत्मा है। अभी तो बाहर से जैसे धर्म हो जाएगा ऐसा मानते हैं, भगवान की यात्रा की, गिरनार शत्रुंजय समय शिखर गए तो मान लिया कि धर्म हो गया। अरे कहाँ धर्म है भाई, यह शुभ भाव है पुण्य है, अशुभ से बचने को होता है करना पड़ता है ऐसा नहीं कहा, करना चाहिए होना ही चाहिए ऐसा नहीं कहा, होता है, लेकिन वह शुभ भाव है पुण्य है। श्रोता कहते उससे परंपरा मोक्ष होता है, क्योंकि शास्त्र में बात आती है परंपरा से मोक्ष होता है, तो उसका अर्थ होता है वो करते करते मोक्ष होता है ऐसा उसका अर्थ लोग समझते हैं, पर उसका अर्थ करते करते होता है ऐसा नहीं, उसको छोड़कर। अब वो कौन से शुभ भाव, ज्ञानी के शुभ भाव, क्योंकि ज्ञानी है उसका आत्मा का अनुभव है, स्वभाव में बारम्बार एकाग्र हो रहा है, तो जितनी एकाग्रता स्वभाव में बढ़ेगी उतने राग उत्पन्न ही नहीं होंगे, यानी क्रम से राग मिटते चले जाएंगे, तो उसके जो पूर्व में शुभ भाव थे उनको छोड़कर अभी स्वभाव में गया है उसको कहेंगे परंपरा से हुआ है। पर शुभ करते करते राग करते करते बंध करते करते मोक्ष हो जाएगा, ये तीन काल में नहीं है, बंध का अभाव करके मोक्ष होना उसको कहेंगे परंपरा से होना। यहाँ क्या कहते हैं, इसलिए श्रोता ने पूछ लिया उससे परंपरा मोक्ष होता है। समाधान, बिल्कुल झूठ बात है, उससे ने शुभ भाव से परंपरा शांति मिलती है यह वास्तविक चीज नहीं, यह पुण्य भाव यानी शुभ भाव दुख रूप है, वह दुख का कारण है। दुख का कारण और दुख रूप में क्या अंतर है, दुख रूप यानी वर्तमान में दुख रूप है एक, और वो बंध का कारण है, वर्तमान में उससे कारण बंध होता है और भविष्य में उसका बंध का उदय भी होगा। आप कहेंगे तो असाता वगैरह बांधे तो दुख का कारण, पर हमने तो पुण्य प्रकृति बांधी वो तो सुख का कारण होगा कि नहीं होगा, तो कहते वो भी दुख का कारण है क्योंकि उसके संयोग में और उसमें रचा पचा रहता है और उसमें इंद्रियों के जो कुछ विषय मिल जाते हैं आसानी से उसमें और उसको भोगने के परिणाम इच्छाएं चलती रहती है, और एक पुण्य के फल में पुण्य ही करता रहेगा ऐसा भी नहीं है, पुण्य पाप ये वो करने में उसके परिणामों में भी शुभ अशुभ होते रहते हैं और उसके फल में भी पुण्य का फल पाप का फल पुण्य का फल पाप का फल चलते रहता है, क्योंकि बांधा हुआ कर्म तो उदय में आने से रहा, तो यही चल रहा है अनादि से और कुछ नहीं किया है, पुण्य भी किया पाप भी किया, मिथ्या दृष्टि के योग्य सभी प्रकार के पुण्य भाव भी किए, पाप भाव भी सभी प्रकार के हो गए। इसमें से छूटने का कुछ मार्ग अलग है, वो यहाँ हमें मौका मिला है सुनने का। देखो टीका है ना नीचे पर, इन्हें ऊपर क्या कहा, वो शुभ भाव दुख रूप है, दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। टीका, क्योंकि शेष समस्त आत्मा सिवाय, सिवाय को अलावा कहते हैं ना, अलावा हिंदी में अलावा कहते हैं ना, आत्मा के अलावा, अर्थात आत्मा का यह जो ज्ञान स्वभाव है, यह आत्मा के अलावा अन्य चेतन में नहीं है। आत्मा ने यह मैं जीव, और आप भी एक जीव हो, तो मेरा ज्ञान स्वभाव मेरे में है, आप में नहीं है, अन्य जीवों में उसका अभाव है। क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक बात है ना, आगम में कहा सभी जीवों सभी जीव ज्ञान स्वरूप है, यह आगम की भाषा। अध्यात्म अभी अध्यात्म करते मैं अकेला स्वयं, मुझे अपना अनुभव करना है, तो अन्य जीवों से भी दृष्टि हटानी है, तो ज्ञान स्वरूप मैं आत्मा कहते बस मैं एक, इस तरह से उसको लेना है सोचने में। इसलिए कहा अन्य चेतन में वो नहीं है, नहीं अचेतन में नहीं तो आएगी बात। क्या कहा, यह ज्ञान स्वभाव आत्मा के अलावा अन्य चेतन में नहीं है, यह ज्ञान स्वभाव जो आत्मा का है उसका आत्मा के साथ एकत्व है। यह ज्ञान स्वभाव अनेरे आत्मा में और अनेरा अचेतन शरीर वाणी जड़ मन दाल चावल सब्जी रोटी ये जड़ में यह नहीं है। समझ में आए ना, अध्यात्म शास्त्र होने से अन्य आत्मा में भी मेरा ये ज्ञान स्वभाव है। क्योंकि हम आपको याद है हम सात तत्वों की बात की थी, जीव तत्व किसको कहा, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है, यही यहाँ बात चल रही, उसी को यहाँ आत्मा कहा। जिसको सात तत्वों में हम जीव तत्व कह रहे हैं, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, वह मैं आत्मा हूँ, वह मैं जीव तत्व हूँ, उसी को यहाँ आत्मा कह रहे। तो हम जीव तत्व में किस किस को लेना, अरिहंत सिद्ध किस किस को शामिल करना जीव तत्व में, अकेले मैं, हाँ मेरा स्वभाव। तो बाकी जीव में क्या नहीं है क्या, जीव तत्व उनका अपना उनके पास है, मेरा अपना मेरे पास है, इसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म में अन्य जीवों से भी नजर हटानी है। एक होते हैं आगम शास्त्र, आगम में तो सभी जीवों की बात करेंगे, सभी जीवों का क्या स्वरूप है, सभी ज्ञान स्वरूप है, वो सब सबकी बात होगी, वो जो इन जनरल होगी। और यहाँ आत्मा ने मैं जीव में ज्ञान है ऐसा नहीं कहा, आत्मा में क्यों कहा, ये आत्म शब्द किसके लिए आता है। स्कूल में आपने कोई निबंध लिखे हो ना, आपके स्कूल में देते थे क्या, छाते का आत्म चरित्र लिखो, जैसे छाता बोल रहा है कि मैं हूं, तो वो आत्म का अर्थ क्या है, अपना स्व को आत्म कहते हैं, कैपिटल आई, हाँ तो ये आत्मा होता है ना। क्या कहते हैं, अन्य आत्मा में भी मेरा वो ज्ञान स्वभाव नहीं है, अन्य अचेतन जो, देखो यहाँ क्या लिया, शरीर वाणी जड़ मन दाल है चावल है सब्जी रोटी पैसा घर दार सबका भी जितने आपको याद है वो सब डालो यहाँ, तो उसमें यह ज्ञान स्वभाव नहीं है। तो ब्रेन में तो होगा कि नहीं होगा,
कल का मेरा सवाल जरा अलग
तो ये तो लगता है ना कि जो मज्जा है यानी जिसको नर्वस सिस्टम पूरी है,
नर्वस सिस्टम माने तो डॉक्टर का ऐसा कहना है, आप भी शायद डॉक्टर है
शायद
अभी नहीं लगते
लगने से क्या होता है
जीव निकल गया फिर
उनको कैसा पता चला जीव निकल गया, डॉक्टरों को पहला कैसा जीव निकल गया क्यों कह रहे, फिर उससे थोड़ी जीव निकल गया। अब एक बार कहते जीव निकल गया और यहाँ कहते कि ब्रेन काम कर रहा है, इट्स सेल्फ विरोध है,
उनका क्या कहना है, हाँ जैसे आँख है ये है वो है उसको अभी ट्रांसप्लांट करके डाल सकते,
थोड़े और घंटे के बाद नहीं करते,
वो साधन जो है वो साधन बाद में तो एकदम बेकार ही हो जाता,
नेचुरल है क्योंकि वो उसका डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है।
अभी जो साधन
अभी जो टिश्यू जो है अभी अभी फ्रेश है ना, अभी अभी ऑपरेशन करने जाओ तो ऑपरेशन में भी हार्ट का भी ऑपरेशन करते हैं तो उसकी एक लिमिट है, 12 मिनट तक आप पूरा पूरा उसको पूरा हार्ट का खाली कर देते हैं, और वो इतना वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखते हैं कि उतने 12 मिनट तक हार्ट वहाँ काम कर रहा है, काम करता है, और उसमें उतने छोटे अवधि में पूरा उनको जो कुछ बड़े बड़े आर्टरीज वगैरह पर जो कुछ ऑपरेशन करना है वो कर लेते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी तो आसान है, उससे भी और कठिन ऐसे ऑपरेशंस मैंने खुद देखे, तो उसमें उतने टाइम लिमिट में उनको सब करना है, अगर वहां नहीं किया तो हार्ट भी गया और ब्रेन भी गया। तो ये तो शारीरिक यानी शरीर विज्ञान है, ये शरीर विज्ञान है, उसमें जीव से कुछ लेना देना, डॉक्टरों को जीव कब छोड़ के चला जाता है कोई पता नहीं लगता, ये अनुमान से वो सभी सारे सिस्टम्स फेल हो गई है, डेड घोषित कर देते हैं। कितने बार वो डेड घोषित करते फिर भी वो तो आदमी जिंदा है, बाद में उठते हैं कि नहीं, कितने केसेस हुए ऐसे, कारण कुछ नहीं है, वो बाहर से शरीर से क्या पता चलेगा कि ये जिंदा है कि नहीं, यानी वो कहे ही नहीं सकते कि किस पॉइंट पर जीव छूट गया, ये तो अनुमान है ना वहां पर।
जैसे जीव का मरण हुआ है ये डॉक्टर नहीं बता सकते, वैसे जीव कब जन्म है वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि जीव का जन्म तो जब माता के पेट में
वो गर्भ में कब कब गर्भधारणा हुई बाद में उसको जो कुछ,
और जो जब पेट से बाहर निकलता है बालक, तो वो बालक को बचाने की सोचते हैं कि घड़ी कितने बजे देखनी,
यानी वो जन्म नहीं एक्चुअल, जिसको शास्त्र में उसको योनि निष्क्रमण कहते हैं, पेट में था वो बाहर निकला है, वो तो वहाँ मनुष्य रूप से जन्म लिया था उसने, जब कहीं से मरकर वहाँ आया है उसने शरीर धारण किया है तब से वो मनुष्य है। अभी आगे बढ़ते हैं, यह पूछा था ना परंपरा, तो उसके नीचे का पैराग्राफ हो गया, ये टीका की बात चल रही थी, यानी अन्य आत्मा में नहीं है, अन्य जड़ में नहीं है, उसकी बात हमने पढ़ी थी। हाँ देखो, अनेरे आत्मा में अनेरे अचेतन में नहीं है, ये जो पैराग्राफ है ना टीका लिखा हुआ, उससे नीचे से दूसरी लाइन, लॉजिक से यह बात करते हैं भाई, लेकिन क्या करे, समझने की दरकार नहीं, ऐसे कुछ कर लिया और मान लेते कि हो गया धर्म। धर्म के नाम पर भी कुछ क्रियाएं चलती है, और जो समाज बहुजन लोग करते हैं वो हमने भी कर लिया तो मान लिया संतोष, क्योंकि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग है उनको भी अगर सच का पता नहीं है तो वो भी ऐसा ही करते रहे, उनके बच्चे वो ही फॉलो करेंगे, तो ये बड़े कर रहे, इतने सब कर रहे, समाज कर रहे, गुरु के नाम पर यही उपदेश हो रहा है, तो कौन सोचेगा कि इससे भी कुछ अलग बात हो सकती है, इसलिए ऐसे ही चलता है। देखो, धर्म जो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, और हम कहते ना जिसकी होनहार है, जिसको ये योग्य उपदेश सुनने का अवसर होना है, जिसको हम देशनल अवधि भी कहेंगे, उसी को मिलेगा ये सच्चा उपदेश, बाकी को किसी को तो सच्चा उपदेश मिलकर के भी वो गौण करके या उसको निग्लेक्ट करके चला जाएगा, उसको सुनने का अवसर मिला नहीं था ये बात नहीं, पर उसको उसमें विश्वास नहीं आएगा, उसको वो सच नहीं लगेगा, यानी विरलों को ही ये मार्ग मिलने वाला है तो बिल्कुल ओपन, कोई भी सुन सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, फिर भी उसी का कल्याण होगा जिसको होने वाला है, ख्याल में आते हैं ना। धर्म जो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, यह आत्मा है ना, स्वभाव है वही आत्मा है, आत्मा ज्ञान भी है और आत्मा अनंत गुण आदि स्वभाव रूप भी है। देखो, ज्ञान है उसको तो आत्मा कहा, पर आत्मा को ज्ञान भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, अस्तित्व भी है, इस तरह से सब में लगा लिया। यह कहते हैं देखो, क्योंकि शेष समस्त चेतन अर्थात यह ज्ञान स्वभाव जो अपने आत्मा में, यहाँ अपने शब्द लगाए ना, जो अपने आत्मा में यानी उसमें जीव तत्व जो मैं वाला ले ला है, वह भगवान परमात्मा है, यानी वही परमात्मा है जो मैं स्वयं जीव तत्व हूँ, जिसको हम परिणाम उसी को अलग अलग नाम दिए हैं, उसमें भी वह यह अपना ज्ञान नहीं, देखो क्या कहते हैं, यह ज्ञान स्वभाव जो अपने आत्मा में है वह भगवान परमात्मा है, उसमें भी वह यह अपना ज्ञान स्वभाव नहीं, यानी अरिहंत भगवान की बात यहाँ करें, अरिहंत भगवान का जो ज्ञान स्वभाव है वह यह ज्ञान स्वभाव वहाँ नहीं है, उनका स्वभाव उनके पास, मेरा स्वभाव मेरे पास, आपका स्वभाव आपके पास, हर एक का अपना अपना जुदा जुदा। स्त्री का आत्मा है तो यह ज्ञान स्वभाव जो आत्मा है, यह ज्ञान स्वभाव स्त्री में नहीं है, और घटपट घड़ा वस्त्र यह लकड़ी है, उसमें यह अपना ज्ञान स्वभाव नहीं है। यानी वो कोई पुरुष कहता है ना कि उसकी स्त्री होगी, तो स्त्री का आत्मा जुदा है, उसका ज्ञान स्वभाव उसका अपना है, और उसका जो पति है उसका ज्ञान स्वभाव उसका अपना है, दोनों में कोई लेना देना नहीं, जुदा जुदा है। और बाकी जो जड़ चीजों के नाम है ना, घट पट घड़ा वस्त्र लकड़ी वगैरह, उसमें अपना ज्ञान स्वभाव नहीं है। शेष यानी अपने ज्ञान स्वभाव के अलावा, यानी क्या कहा, इस एक बाजू मैं यानी मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा कहने से भी मैं ज्ञान स्वभावी ही हूँ, और शेष में अन्य सभी अनंत जीव, मुझको छोड़कर अनंत जीव और बाकी सभी पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब एक पल्ले में, और यहाँ अकेला मैं कहने से ज्ञान स्वभाव। तो शेष समस्त चेतन, चाहे तो अनंता निगोद का जीव हो, परंतु यह अपना ज्ञान स्वभाव जो है, अपना नाला ना, वह अनंत निगोद के स्वभाव में यह ज्ञान स्वभाव नहीं है। तो कोई पूछेगा क्या वो ज्ञान स्वभाव ही नहीं है? उनका हर एक का अपना अपना जुदा जुदा। हाँ, सिद्ध भगवान हो, अरिहंत परमात्मा हो, परंतु यह ज्ञान स्वभाव जो आत्मा, यह कहने से अपना, यह ज्ञान स्वभाव आत्मा, यह ज्ञान दूसरे में नहीं है। समझ में आया? पहली पंक्ति का यह अर्थ होता है। यहाँ कहते हैं शेष समस्त चेतन, जितने आत्मा है, अनंत अनंत आत्मा है, चीटी मकोड़े उसमें भी आत्मा है, बाहर शरीर तो जड़ है परंतु अंदर आत्मा है, जैसे एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव संसारी सारे, और सिद्ध भगवान सभी आत्मा तो है ना, और उनका अपना अपना ज्ञान स्वभाव, हर एक का अपना अपना जुदा जुदा है, परंतु वह आत्मा का ज्ञान स्वभाव उसके साथ है, और इस ज्ञान स्वभाव का आत्मा के साथ संबंध, यानी मेरे साथ संबंध, यह ज्ञान स्वभाव, यह मेरे साथ इसका संबंध है, अपने ज्ञान स्वभाव का उसके आत्मा के साथ संबंध नहीं है, यानी अन्य जीव से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर यह कहना है, यहाँ जो अपना ज्ञान स्वभाव है उसका शेष समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तुओं के साथ समवाय संबंध नहीं है। नीचे समवाय संबंध का अर्थ है, समवाय संबंध उसको किसको कहा, जहाँ गुण होते हैं वहाँ गुणी होता है, गुणी यानी गुणों को धारण करने वाला, वो गुणी द्रव्य को ही गुणी कहते हैं। तो जहाँ गुण होते हैं वहाँ गुणी होता है, गुणी यानी ये गेहूं की और चावल की गुणी होती है वो गुणी। यहाँ गुणी का अर्थ जो जानन जो गुण है, वही गुणी यानी आत्मा है, वही के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, अगर बिंदी दे दे तो उसका अर्थ होता है वहां ही, और वही लिखते हैं तो अर्थ वही यानी सेम। इस गुण का धरने वाला आत्मा यह गुणी है। समझ में आया? वैसे तो ये चावल और दाल जिसमें भरते उसे भी गुणी कहते हैं, वो बात अलग। यह जो ज्ञान स्वभाव है उसका आत्मा गुणी के साथ संबंध है, यानी जो मेरा ज्ञान स्वभाव है उसका मेरे साथ संबंध है, अन्य किसी के साथ उसका संबंध नहीं है। ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है। शक्कर में जो मिठास है यह गुण है और शक्कर गुणी है। शक्कर की मिठास जो है यह गुण है और शक्कर गुणी है। इस गुण को धरने वाला यह गुणी है, और यह जो शक्कर की मिठास है वह मिठास दूसरी शक्कर में नहीं है। यह मिठास दूसरी शक्कर में भी नहीं, और यह मिठास अफीम में भी नहीं, लकड़ी में नहीं, दूसरे कोई पदार्थ में नहीं। यह तो लॉजिक न्याय से मार्ग है भाई। क्या कहते, क्या सभी शक्कर में, शक्कर के हर एक दाने में मिठास है ना, हर एक की अपनी अपनी जुदी जुदी। स्थानकवासी में पांचवा श्रवण सूत्र आता है, उस वक्त ये सबके व्याख्यान में समुदाय में अर्थ किए हैं, नाम श्रवण सूत्र दिया है, लेकिन अभी तो श्रावक भी करते हैं। वह शुभ भाव है धर्म नहीं। हाँ, श्रवण का अर्थ होते मुनि, क्योंकि वह तो विकल्प राग है। यह राग आत्मा का स्वभाव नहीं। क्या कहते हैं, ये जो शुभ राग है, शुभ भाव है, वो धर्म नहीं है। एक बात, क्यों धर्म नहीं है? क्योंकि वह विकल्प है, और राग है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। और धर्म तो हम उसी को कहेंगे, स्वभाव को धर्म कहेंगे। उसी में एकाग्रता करने से पर्याय में धर्म प्रकट होता है। और आत्मा का स्वभाव नहीं है, फिर भी उसमें एकाग्रता होना, देखो क्या कहा, राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, विपरीत भाव है। और वो राग में एकाग्र होना, बिल्कुल मनोभाव से वो शुभ भाव कर रहे, यानी राग में एकाग्र होकर कर रहे हैं, तो कहते यह तो दुख में एकाग्रता है। समझ में आई बात? क्योंकि राग है वो दुख है, और राग में एकाग्र हुआ वो दुख में एकाग्र हुआ, और चाहता है सुखी होना, उसको तो दुख का ही अनुभव होगा। श्रोता पूछते, सारा जगत कहे ऐसे करना कि नहीं? क्योंकि पूरे समाज में ये बात लाखों लोग कर रहे हैं, और आप इसको ना पाड़ते हैं, तो आप पर कौन विश्वास करेगा? इसलिए कहते कि सारा जगत कहे ऐसा करना कि नहीं। समाधान, सारा जगत पागल है। महीने में लाख लाख रुपए पैदा करने वाला भी पागल, पर पदार्थ को अपना मानते इसलिए पागल है। गुरुदेवश्री, बात तो सच है, लेकिन वह स्वयं खुद क्या है इसकी खबर नहीं है, तो पर को अपना मानेगा। हम पागल किसको कहते हैं? जो सुध-बुध खो जा देता है, भले करोड़पति का बेटा हो, और उसको पहचान भूल जाते हैं, बिल्कुल जिसको कहेंगे स्मृति भ्रंश हो जाता है, और कहीं भिखारी जैसे बाहर भीख मांगते फिरता है, तो उसको मालूम भी नहीं कि मेरा कौन सा उच्च कुल है और कितने पैसे वाले क्या है। और फिर ऐसे कहीं निकल जाते घर से बाहर, हमने देखे होंगे, पेपर में भी आते हैं, फिर बाद में कहीं सालों बाद वो मिलते भी है कोई किसी को, कोई नहीं भी मिलते। तो ऐसे बड़े कुल का होकर भी उसको अपने कुछ पता नहीं है, तो हमें उसकी दया आती है ना। अरे उसको पागल कहते हैं सब, ये क्या पागल है, उसको मालूम भी नहीं मैं कौन हूँ, क्या है, कहाँ जा रहा है, क्या भटक रहा है। तो कहते हैं आपको भी ये सब लाखों भले हाँ, ये पागल है, क्योंकि मैं कौन ही मालूम नहीं है, और ये शरीर को मैं हूँ कह रहा है, तो वो पागल से ये तो और ज्यादा दुखी है। तो एक बहु में वो पागल जैसा घूम रहा है, और ये तो अनादि से यही बात चल रही है इसकी। यानी पर को अपना मानकर चल रहा है तो पागल नहीं तो और क्या है उस है? यहाँ क्या कहते हैं कि यह जानन स्वभाव गुणी का यानी आत्मा का है, और गुण और गुणी अभेद है। ऐसे अस्तित्व की, ऐसी सत्ता की दृष्टि न हुई, यानी अपने अस्तित्व की अगर दृष्टि नहीं होती है, तो अपना अस्तित्व तो कहीं मानना पड़ेगा। जिसको अपने अस्तित्व की पहचान नहीं है, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभाव हूँ, ऐसा जिसने नहीं पहचाना है, परंतु कहीं ना कहीं मैं उसको रखेगा ही रखा। क्या कहा, अपना अस्तित्व तो कहीं मानना पड़ेगा। देखो इसका ऐसा कहा है शास्त्रों में कि हरेक जीव को मैं हूँ इस बात का पूरा एहसास है, पूरी गारंटी। वो किसी को पूछना नहीं पड़ता है मैं हूँ क्या नहीं हूँ। अपने अस्तित्व के बारे में हरेक को उसका ज्ञान भी हो रहा है, उसका श्रद्धा भी है, पर भूल कहाँ हो रही है, मैं कौन हूँ। जो मैं सच में आत्मा हूँ इसकी पहचान नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं तो मैं पना वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो ये इंद्रियों के द्वारा क्या दिखता है, जहाँ ये जानने रूप का एहसास हो रहा है, जहाँ मैंपना का एहसास हो रहा है, वो मैंपना में क्या दिखता है, उसको तो शरीर दिखता है। तो शरीर ही मैं हूँ ये उसकी मान्यता बनी रहे, कब से, अनादि से चल रही। जिस भाव में जाता है वहाँ यही बात चलती। अब यहाँ हम मनुष्य है, तो हम इस स्त्री देह को या इसको हम ये मैं करें, इसके पहले हमारा अस्तित्व था कि नहीं था, क्या पता कौन से गति में से हम यहाँ आए। तो वहाँ थे तब वहाँ उस शरीर में अपनत्व था कि नहीं था, उसके पहले कभी अनादि तक चले जाओ पीछे, यानी जिस भाव में गए वहाँ उस शरीर रूप से अपना मानकर चल रहे। अब ये तीरंज भी अपने को उस रूप मान के चल रहे, और वो सहज रूप से वैसे वैसे कर्मों के अनेक भेद है, वैसे उनके जो गति नाम कर्म के भी और चारित्र मोहिनी के भी उस जाति के उनके उदय होते हैं, तो वैसे उनके परिणाम सहज हो जाते हैं। उनको कौन सिखाना जाता है? कुत्ते को कुत्ते जैसे बिहेवियर करना कौन सिखाता है? ये पंछी जो उड़कर आते इतने हजारों माइल, उनको कौन कैसे ट्रेनिंग देता होगा? ये सुबह बात आई थी ना अपने ज्ञानावरण के, उसमें बात आई थी आज, आज क्या कल आई थी महाबंध में, यानी उस जाति में वो सहज रूप से वो उनका ज्ञानावरण वैसा ही खुल सोक्षम सहज होता है, सिखाने नहीं पड़ती बात। जिस जाति में उत्पन्न हुआ है उस जाति योग्य उसके जो परिणाम है, वो जो ज्ञान है वो बिना सिखाए उसको हो जाता है। उसकी बात चली थी सुबह के लेक्चर में आई थी। हाँ देखिए, अगर हम यहाँ पढ़ रहे पेज नंबर है 71, नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे थे, उस पैराग्राफ की तीसरी लाइन, यानी वो कहीं ना कहीं अस्तित्व तो मानेगा ही, इसलिए पुण्य और पाप का विकार है वहाँ अपना अस्तित्व मानता है। देखो क्या कितने लॉजिक से बात बताती। एक तो शरीर में तो अपना अस्तित्व मान के बैठा ही बैठा है, शरीर तो मैं हूँ और मैं कैसा हूँ, तो मैं बहुत दयालु हूँ, मैं बहुत जो शुभ भाव करने में पुण्य वाला हूँ, इस तरह से उसने अपने को राग में ये उसमें अपना अस्तित्व मान के रखा है उसने, तो पुण्य और पाप का विकार है वहाँ अपना अस्तित्व मानता है। अथवा तो पुण्य पाप का फल जो संयोग है उसमें अपना अस्तित्व मानता है। मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना निरोगी हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, ये पुण्य के पाप के फल में उसका अपने अस्तित्व खोजता है, संयोगों में अपना अस्तित्व खोजता है और अपने उसके कारण बड़ा भी मानता है अपने को,
दूसरों को भी वही निगाह से देखता है।
बिल्कुल, जैसे अपने जिस दृष्टि से अपने को देखता है दूसरे को भी वैसे ही दृष्टि से देखता है। अपने को शरीर रूप से अनुभव चल रहा है उसका, उस रूप से देख रहा है, भगवान को भी नहीं छोड़ता है, भगवान को भी शरीर रूप से देख रहा है। कहीं यात्रा करके आते तो पहला प्रश्न कैसे थे क्या थे, तो पूरा ये पत्थर का वर्णन चलता है, क्या सफेद पत्थर था, क्या ये ऐसा था वैसा था, हसमुख था और यह है वैसा है, यानी वहां भी वो भगवान की वितरागता और सर्वज्ञता उसमें नहीं देखता है। तो बाह्य मुनि को भी देखता है तो उनके क्या आचरण कैसे चलते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसी को देखते हैं, या उनके जो पुण्य पाप के परिणाम है उनको देखेगा।
वो पारला मंदिर जो है वहाँ का जो मूर्ति है भगवान की, पारला मंदिर में इतनी शुभ्र है, इतनी स्पॉटलेस है, ऐसा है वैसा है, उसका वर्णन करेंगे, उसका इतना वजन है, उसको इतना पैसा खर्चा किया है, और उसमें जो वितरकता है वो देखने को टाइम नहीं मिलता।
ऐसा है ना, क्या करे, ऐसा है, कोई यात्रा इधर गया या अभी कितने यात्रा करेंगे तो समाधान होगा। यात्रा करने का हेतु ही क्या होता है कि बाबा हम अन्य विकल्पों में नहीं उलझे तो वो एक विकल्प आता है, परंतु वहां उनकी वितरागता और सर्वज्ञता देखकर बस इसको देखा उसको देखा हमने इतनी यात्रा की, ऐसा हो जाता है।
और उसके आगे तो उसके आंगी देखते हैं, मुकुट देखते हैं, ये देखते हैं,
वो तो अभी ठीक है, हम तो दिगंबरों की बात करेंगे, परंतु वहाँ उसकी महत्व, हाँ वही तो है। यानी भगवान का स्वरूप मालूम नहीं तो फिर इसके वैसा ही वही सुना है बचपन से, यानी उसी में धर्म मान के बैठते हैं, यानी सोचा नहीं ना कभी। हाँ, मगर भगवान आंख से देखते ही नहीं, यही पता नहीं था ना, क्योंकि आंख खोलने का सवाल क्या है भगवान के, केवल ज्ञान से सब कुछ जानते हैं। हाँ। देखो आगे क्या लिखते हैं, देखो संयोग में अपना अस्तित्व मानता है, पैसा बहुत हो गया तो मैं बढ़ गया ऐसा लगता है ना, इसे शरीर में अपना तो माना तो मैं बच्चा था, मैं अभी ऊंचा हो गया, मैं अभी गोरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बलवान हूँ, उसी में अपना तो लगता है। अभी राग में अपना माना, अभी संयोग में अपना मान रहा है, तो पैसे बढ़ गए तो मैं कुछ विशेष हो गया, अभी मैं बढ़ गया हूँ। ज्ञान स्वभावी आत्मा है ऐसे अपने अस्तित्व की खबर नहीं, यानी बिल्कुल उसका विचार नहीं, कुछ उसकी अता पता ही नहीं उसका, अपना अस्तित्व क्या है, ज्ञान स्वभाव भी मैं हूँ। आत्मा आत्मा छोड़ दो, वहां आत्मा के जब बदले मैं पढ़ो, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, इतना ही मेरा अस्तित्व है। इसमें तो बहुत सारा है, परंतु फिर भी हमने अपना अस्तित्व पैसे में इसमें इसमें उसमें मान के रखा है। वह परमे अपना अस्तित्व मानेगा, और जिसको अपना स्व अस्तित्व सत्ता का होना ज्ञान में भाषित हुआ, अपनी सत्ता की पहचान जिसको अपने में हुई, ज्ञान यह है यह मैं हूँ ऐसा अस्तित्व जिसने माना, उसका यह ज्ञान कोई दूसरी चीज में नहीं है ऐसा अनुभव होता है, उसमें एकाग्र होना, यह तो अपने ज्ञान में एकाग्रता होना है, करना तो यही ना, अपने ही ज्ञान में अपन को एकाग्र होना है। यानी अपना अस्तित्व कितना है तो ज्ञान जितना है, तो उसी में तो एकाग्र हो जाना है, उसके विकल्प करते बैठना ऐसा नहीं कहा, उसी को जानते रहना है, उसमें एकाग्र होना, यह तो अपने ज्ञान में एकाग्र होना है। क्योंकि यह ज्ञान दूसरे कोई चैतन्य और दूसरे कोई जड़ पदार्थ में नहीं है, ये जो ज्ञान स्वभाव है वो अन्य में, मेरा ज्ञान स्वभाव मेरे में, अन्य में किसी में नहीं है। परमेश्वर में भी यह ज्ञान नहीं है, देखो ये यह ज्ञान शब्द डाला है, यह ज्ञान स्वभाव है, यह यानी ये मेरा, नहीं तो ये आधा अधूरा पढ़ेंगे, यहाँ कहते परमेश्वर में ज्ञान नहीं, ऐसे पढ़ने वाले सुनने वाले भी मिलते हैं, और वो जो लिखा है उसका अर्थ का अनर्थ करके प्रस्तुत करते हैं, इन्होंने ऐसा लिखा या उल्टा करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हाँ अनर्थ होता है यह। हाँ अभी अज्ञानी है जिसको विरोध करना है, उसको विरोध के लिए क्या करेंगे। गुरुदेव के कितने वाक्य आधे अधूरे निकालते थे उनके प्रवचन में से, और उसको प्रोपोगंडा करके उनके विरोध में कितना कितना पूरे लिखित रूप से कितने मैगजीन्स में आता था। हमको भी अनुभव हुआ ना, ये जैन भूगोल पुस्तक में से आधा अधूरा वाक्य लिया कहीं से, ऐसा कहते ऐसा कहते ऐसा कहते, कितने मैगजीन्स में उसके अगेंस्ट जिसको बोम्बा बोम कहते ऐसा कहते, हमने उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो आगम के विरुद्ध एक शब्द नहीं लिखा, हम क्यों डरे। हाँ देखो यह ज्ञान नहीं है इसलिए उसमें एकाग्रता नहीं करना, यह इन्हें कौन सा, दूसरे चेतन में ज्ञान है और वह यह ज्ञान नहीं, यह इन्हें मेरा नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप मुझ में हूं, मुझे उसमें एकाग्र होना है, भगवान में एकाग्र, उनका ज्ञान स्वभाव उनके पास है और वो उसमें एकाग्र होने से उनका परमेश्वरपना प्राप्त हुआ है, पर उनको देखते रहने से, उनकी भक्ति कहने से, गुणगान करने, हाँ वो उनको तरफ देखकर हमको यहाँ जिसको कहेंगे उनको देख देख कर यहाँ हम अपना पुरुषार्थ अपने में बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस जीव ने कर देखा, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे वे हैं वैसे मैं हूँ, तो उनको देख कर अपना यहाँ पुरुषार्थ अपने में बढ़ाना है, उसमें एकाग्र तो कर ही नहीं सकते, दूसरे में क्या एकाग्र करेंगे। तो यही कह रहे हैं कि यह ज्ञान नहीं, यानी यह मेरा जो है वो उसमें नहीं है, इसलिए उसमें एकाग्रता नहीं करना। भक्ति का आदि का भाव होता है लेकिन वह शुभ राग है, हम कहते भक्ति कितने एकाग्रता से भक्ति कर रहा है, हाँ वो राग में एकाग्र हो रहा है, हो गए वो राग के भाव आना, वो भूमिका के योग्य आएंगे, परंतु फिर भी उस काल में भी एकाग्रता की भावना तो अपने स्वरूप की है। वो कल आया था वचनामृत में एक वाक्य, वो भले शुद्धोपयोग में हो या शुभोपयोग में भी हो, उसकी दृष्टि तो चैतन्य पाताल पर बनी रहती है। उसका अर्थ क्या है, अपने ज्ञान स्वभाव की उसके हर समय उसकी, भले उसका उपयोग भी बाहर है, ज्ञान वहां यहाँ चल रहा है, फिर भी उसकी उसकी दृष्टि कभी छूटती नहीं है, ये पुण्य है, छूट जाएगा, पुण्य है, धर्म नहीं, समझ में आया। यहाँ कहते हैं यह आत्मा जो अंदर है यह ज्ञान स्वभावी है, जैसे शक्कर है यह मिठास स्वभावी है, शक्कर की यह मिठास दूसरी शक्कर में या दूसरे अफीम या लकड़ी में है नहीं, ऐसे यह भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव यानी मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, तो मेरा यह ज्ञान स्वभाव अन्य आत्माओं में, अन्य जड़ पदार्थों में, अन्य किसी में भी नहीं है, मेरे में है और मेरे अलावा किसी में भी नहीं है, इसको कहेंगे अनेकांत। ऐसी बातें हैं, अब यही रुकेंगे हम। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम दादे तहु। अरविंद
नमो वरियंता नमो सिद्धानम नमो आयरियम नमो वरियंता नमो सिद्धानम नमो आयरियम।